श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। सब लोग बोलिए श्री राधा गिरिधारी भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग ध्यान से पुकारिए, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। Where are teachers? हरे कृष्णा। ये परम भाग्य की बात है कि भगवान की कथा सुनने के लिए आप सब लोग इतनी संख्या में एकत्र हुए, क्योंकि कलयुग में किसी को भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। सब लोगों को फिल्म स्टार की कथा सुननी है, क्रिकेटर की कथा सुननी है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। इस प्रकार से जो बड़े बड़े लोग हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं दुर्भाग्य से इस दुनिया में, पॉलिटिशियंस को, क्रिकेटर्स को, स्पोर्ट्समैन को, वो सब लोग बिना भगवान के भक्ति का जीवन बिता रहे हैं, और जो उनसे प्रभावित हैं वो भी उनका अनुकरण करना चाहते हैं। इसलिए दुर्भाग्यवश हम उन्हीं की घिलौनी कहानियां सुनते रहते हैं, एक शादी किया, दूसरा शादी किया, फिर तोड़ दिया, फिर तीसरे के साथ अफेयर चल रहा है, इस तरह से उनका जीवन चलता है। और उसी को चरवण यानी चूसने में हम लोग आनंद मानते हैं, उनकी कथाओं को बार बार डिस्कस करने में। अरे पता है, सुना तुमने, ये उनके जीवन के घिलौनी कथाओं को बार बार चरवण करने में हमको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी कथाओं को श्रवण और चरवण करने से हमारा क्या कहते हैं उसको, अधप पतन, यानी हम सब गिर जाते हैं अपने अच्छी स्थिति से, हमारी चेतना गिर जाती है, नरक चेतना बनती है हमारी, पुण्य चेतना नहीं बनती है। तो सब लोगों को ये समझना जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को एक हीरो चाहिए जिसका वो गुणगान कर सके, जिसको कहते हैं ना आइडोलाइज कर सके, ये हमारा हीरो है, ये हमारा आदर्श है, इसको हम फॉलो करेंगे जहाँ जाओ, ट्विटर पे फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इनके जीवन को फॉलो करेंगे, वो जो कहते हैं दो बातें उसको फॉलो करेंगे, वो हमारे जीवन का आदर्श है। ये हमारे प्रत्येक जीवन के प्रत्येक जीव का स्वभाव है। हमारे जीवन में भी कोई हीरो है ऐसा नहीं, मत समझना कि हमारे जीवन को हीरो नहीं है, लेकिन वो हीरो नहीं है जो आप लोग समझते हो दूसरे हीरो है हमारे जीवन में, जिनको हमारे, जिनके बारे में हम बार बार सुनते रहते हैं, जिनके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, जिनको अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, जिनके वाक्यों को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो कौन हमारे जीवन का हीरो है और किसको हम हीरो बनाते हैं, इससे हमारे जीवन की गति बन जाती है, यस और नो। अगर आप क्रिकेटर को फॉलो करेंगे तो उसी के जीवन को आदर्श समझ के उसके पीछे चले जाएंगे और वो जहां जाएगा वहां आपको ले जाएगा, वी डोंट नो वेयर। लेकिन जब संत हमारे हीरो होते हैं, जब उनका जीवन हमारा आदर्श होता है, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा होता है, तो निश्चित रूप से न जानते हुए भी अगर हम उनका फॉलो करेंगे तो आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से वो भगवान की तरफ ही जा रहे हैं। और उनको हीरो बनाएंगे, उनका आदर्श बनाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके जीवन की चर्चा करेंगे, उनके कार्यों का विचार करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप भगवान की ओर जा रहे हैं। जैसे बालक को पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो अगर माँ के गोद में बैठा है और माँ विरार ट्रेन में बैठी है तो बालक विरार में पहुँच जाएगा। बालक को पता नहीं है ट्रेन क्या होती है, कहाँ जाती है, लेकिन वो केवल माँ की गोद में बैठा है, माँ उसका सर्वस्व है, जो भी माँ है सर्वस्व है, कहीं भी ले जाए तो माँ के साथ माँ जहाँ जाएगा पहुँच जाएगा। इस तरह से हम माँ किसको बनाते हैं, पिताजी किसको बनाते हैं जीवन में, है घर में माता पिता, लेकिन हमारे दिमाग में कोई और है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। जहाँ प्रसिद्धि है, जहाँ बहुत पैसा है, जहाँ बहुत ग्लैमर है, वो हमारे हीरो बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्लैमर, प्रसिद्धि, सर्वश्रेष्ठ धन, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य, सर्वश्रेष्ठ पावर, ऐसे लोग हैं हमारे पास, इनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन जानना चाहिए, वो जानना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो कथाएं सुनना सबका स्वभाव है। सबसे ज्यादा क्या बिकता है, स्टोरी, झूठ मूठ की स्टोरी बना के भी पिक्चर हिट हो जाता है, 300 करोड़, 400 करोड़, कुछ कहानी सच है ही नहीं, वो ऐसे ही बना बिना बनाई बनाई कहानी है, जिसमें हीरो आकाश में उड़ रहा है, आकाश में उड़ से ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग में कूद रहा है और फाइट कर रहा है, ये सब इमेजिनेशन है, तो कुछ है ही नहीं इसमें। फिर भी वो लोग देखते हैं, उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को कथा, स्टोरीज, कहानियाँ सुनने की इच्छा है, होती है, वो स्वभाव है आपका और हमारा। आप 80 साल के आदमी को साथ बैठोगे ना और एक स्टोरी बताओगे तो वो रिझ जाएगा, मजा आएगा उसको, मनोरंजन हो जाएगा उसका। और एक बालक को बैठ के कथा सुनाओगे तो वो सबसे ज़्यादा बोले मम्मी कथा सुनाओ, मम्मी स्टोरी सुनाओ, और वो क्यों सुना रही हो, वो तो कल सुनाया था ना आपने, दूसरी नहीं सुनाओ। क्योंकि ये जीव का स्वभाव है कि उनको मधुर मधुर कथाएँ सुनना अच्छा लगता है। ये सब क्यों है, क्योंकि हम सब लोग भगवान के अंश हैं और सब लोग भगवान के बंदे हैं। हम लोग जानते नहीं, अभी भूल गए, लेकिन एक्चुअली हम लोग वही हैं। और जो भगवान के हम अंश हैं, उनकी कथाओं को, उनकी लीलाओं को सुनने का हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, मूल स्वाभाविक इच्छा है, अंदर की इच्छा है। लेकिन वो जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, फिर किसी और की सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने की इच्छा है हमारे अंदर, तो वो है हमारे भगवान। और वो आप लोगों को, हम लोगों को अनंत कथाएं देने के लिए अनंत अवतार लेते हैं और कथाएं बनाते हैं ताकि हम लोगों को सुनते रहें, चाव से, रुचि से, मन से, दिल लगाकर सुनते रहें। तो हमेशा हम सोचते हैं, अरे हिरण्यकश्यप को मारना था तो इतना खंभा तोड़ के, फिर वो ऐसे 50 हाथ लेके, फिर ये, फिर नाखून से फाड़ रहे हैं, फिर वो दिल को निकाल के फेंक रहे हैं, उसको पेट फाड़ के आतनी को गले में पहने रहे हैं, फिर उसको ढकेल रहे हैं, इतना सब करने की जरूरत क्या है, वो तो सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं ना, वो धारण करने का, हार्ट में प्रवेश करने का, मेन आर्टरी काट देने का, उधर चक्र से क्या, उसमें कितनी स्काल्पेल की जरूरत होती है, कितनी साइज होती है आर्टरी की, आपको अंदर जाने की शक्ति है आपके पास, छोटा बनकर अंदर जाइए और ना छोटा चक्र जो है, मिनी चक्र, उससे काट दीजिए, एक बार वो मेन आर्टरी ब्लेड होगा तो क्या जरूरत है पेट फाड़ने का, आतरी पहनने का क्या जरूरत है। बट ये सब क्यों करते वो, ताकि एक सुंदर रोचक कथा बने, एक फिल्म का स्क्रिप्ट बने, ताकि आप लोग उसमें ड्रामा कर सके, आपको सुन सके उसको चाव से, वाह अरे क्या भगवान ने देखो ऐसा उठाया उसको, कंधे पैर पे रखा, दो हाथ से ऐसा पकड़ा, दो हाथ से फाड़ दिया, दो हाथ से माला पहना, ऐसा लगता है ना, सनसनी खेज, एक्शन इमोशन। हाँ सब लोग को चाहिए ना एक्शन इमोशन। अभी क्या है, ठंडा चल रहा है, कुछ कुछ एक्शन नहीं, इमोशन नहीं, कुछ नहीं, गाना नहीं, डांस नहीं, बीच में कुछ कुछ फाइट नहीं, कुछ टेंशन नहीं, कुछ एंग्जाइटी नहीं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा उत्सुकता नहीं। तो वो कथा में किसको इंटरेस्ट है? अरे भगवान की कथा पढ़ो, क्या चाहिए आपको, हर चीज का इमोशन मिलेगा आपको उसके अंदर। वो सब लोग वहीं से लेते हैं टुकड़ा टुकड़ा, और आप लोगों को फिल्म हिट करने के लिए फिल्म बना देते हैं, और आपसे 300-300 करोड़ निकाल लेते हैं, लेकिन उसके साथ आपको लाभ कुछ नहीं होता है। तो इसलिए संभवामी युगे युगे, भगवान जो है वो बार बार लगातार अनेक बार आते रहते हैं, अलग अलग रूप में आते रहते हैं, अलग अलग कारण से आते रहते हैं, अलग अलग भाव से आते रहते हैं, और हम लोगों के सामने वो एक बहुत सुंदर ड्रामा जो है ना प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर कई सालों के लिए। कभी कृष्ण आते 125 साल, राम आए तो 11,000 साल, नरसिंह आए तो 1-2 दिन, जो भी उनका स्क्रिप्ट है, और ये सब आते हैं और यहाँ पर अपनी लीला डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शित करते हैं हम लोगों के लिए, जीवन भर के लिए उसको मनन करने के लिए एक सब्जेक्ट दे देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अभी वो आपने वो शोले देखा था, वो भी क्या अभी कितने बार देखने का, उसको बोर हो गया अभी देख के, दूसरा पिक्चर दिखाओ, ऐसा भी नहीं है। उसी कथा को अनंत बार सुनो, हरि कथा हरि अनंता, हरि हरि कथा अनंता, सुनते रहो। मैं भी बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, अभी कल जाऊँगा जन्माष्टमी में भी वही कथा बताऊँगा जो पहले बताई थी, लेकिन ना मुझे बोलने में बोर हो रहा है, ना सुनने को सुनने वाले को बोर हो रहा है, ये हकीकत है। क्योंकि नव नवाया मान है, वो हर समय नया है, हर समय नूतन है, हर समय फ्रेश है। तो जो आपको जरूरत है वो आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा कि फुलफिल हो गया, आज धन्य हो गए, पहली बार लगा कि ऐसे कुछ हृदय भर गया आनंद से, जिसके हमें इंतजार था। तो ये जो भगवान की कथा सुनने का जो विषय है, सब लोग समझ लो, जो नए हैं, पुराने हैं, जो समझते हम सब जानते हैं, जो समझते हम कुछ नहीं पता, सब लोगों के लिए संदेश है ये। यही हमारे श्रवण का, श्रवण इंद्रियों का विषय है भगवान की कथा, वो आउटडेटेड नहीं है। क्या तुम लोग ऐसे गांवटी लोग राम की कथा सुनते हो, क्या है इसमें, कुछ दम है क्या उसके अंदर, ऐसा विचार चल रहा है आजकल। उनको नई नई सनसनी खेज ऐसी खून खराबे वाली कथा चाहिए, दिमाग भी खराब होता है, रात में सपने भी आते हैं बाद में, बाप रे वही खून खराब रात में सपने में दिखता है। भगवान की कथा सुनोगे भगवान का सपना आएगा आपको, आएगा तो अच्छा है बहुत, लेकिन अगर आप कथा सुनोगे तो हो सकता है उनकी उनका ही सपना आएगा, लेकिन बहुत सारी कथा सुनोगे पता नहीं कौन सा सपना आएगा, नो गारंटी। जो आपको दिल को अधिक छू गया है वो आएगा सपने में। सपने में क्या आता है, जो दिल को बहुत छूता है ना वो आदमी सपने में दिखता है। जैसे वो दिन मैंने एक एक रात में वो भक्ति वेदांता आई हॉस्पिटल बरसाना बना दिया एक एक ड्रीम के अंदर, क्योंकि वही चल रहा है चिंतन, कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा, डिजाइन बन रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो एक नाइट में बना डाला उसको मैंने सपने में तो क्या आपके मन में चिंतन है, किस बारे में आप गहराई में सोचते हो, कौन सी बात आपके दिल को छू गई है, वही आपके सपने में बार बार आती रहती है। तो इसलिए आपके मन के चिंतन के विषय को भगवान बनाओ, तो फिर आपको वही याद आएगा, उनकी कथा सुनो, उनके मन उनके इनके अंदर मन लगा के रहो। लेकिन यंग लोग सोचते होंगे क्या आउटडेट बात कर रहे हैं सब, कौन हमको अप्रिशिएट करेगा इसके लिए, अरे हु केयर्स हु अप्रिशिएट्स अस, भगवान ने अप्रिशिएट किया तो सब कुछ सबका हो गया काम, बेड़ा पार हो गया आपका। ये दुनिया के लोगों से अप्रिशिएट करवाने से क्या मिलेगा आपको, कौन आएगा आपको तारने के लिए, जब मृत्यु का समय होगा तो कौन खड़े होंगे, हंसने वाले रोने वाले जो आपको हंस दिए पहले, वो थोड़ी खड़े होंगे वहां पर, वो आपके एग्जाम होगी और आपको सामना करना है उनको। उस समय कितने लोग आपको देखे हंसे, तिलक को देखे हंसे, सेंड को देखे टिका किया हमारे पर, हु केयर्स। आपके बचपन में जब आप केले के छिलके पे घिसर फिसल गए थे स्कूल में, तो कुछ लड़के लड़के आपको देखे हंसे थे, वो किधर है आज आपके सामने, हु केयर्स, तब को आपके ऊपर हंसा था, कोई कीमत है क्या उसकी बताओ। या जैसे आज कोई हंस रहा है तो आज क्या कीमत है उसकी, जब शादीशुदा होकर 4 बच्चे हो जाएंगे तो आज जो हंसा था उसकी क्या वैल्यू है, वैसे ही तो जो हंसने वाले हंसते रहेंगे और बाद में सब लोग रोएंगे, और जब वो सब रोएंगे हम हंसेंगे, मतलब उनके ऊपर नहीं, हमारी मृत्यु के समय हंसेंगे क्योंकि भगवान की प्राप्ति होगी हमें। तो आज का पहला मैसेज ये है कि ये कान जो है ये सबसे बड़ा इंद्रिय है, श्रवण कहते हैं उसको, और ये इंद्रिय का विषय है, इसका विषय है भगवान की कथा। तो उस पर आप दिल लगाओ, उसमें रुचि पैदा करो, उसमें बहुत इंटरेस्ट इतना पैदा होगा आपको ना, मुझे तो अभी पता नहीं ऐसा इंटरेस्ट होगा कि मैं नई 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 कथाएं पढ़ते रहता हूँ, मुझे इतना उसमें, कल रात को भी मुझे जल्दी सोना था यहाँ कथा करने के लिए आने के, लेकिन फिर भी 10:30 हो गए क्योंकि मैं वो कथाएं पढ़ ही रहा था और नोट्स बना रहा था उसकी, जो मुझे कल परसों बोलना है, मेरे बाद में आ रही है, अभी कल सुबह को उठने को नहीं गया इसलिए मैं सो गया। फिर मैं तो रात भर पढ़ता पाए, इतना आनंद आता था मुझे उसमें। तो इस बात पर मुझे अभी एक याद आ रही है कि आप सब लोग ने सुखदेव और परीक्षित की कथा सुनी है क्या? बहुत लोगों को पता नहीं होगा शायद। वो सुखदेव जो है ना, सुखदेव गोस्वामी, वो व्यासदेव के पुत्र हैं, व्यासदेव नारद जी के पुत्र हैं, शिष्य हैं, और नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ऐसा ये सीक्वेंस है। व्यासदेव जी वैसे पराशर के पुत्र हैं, नारद जी के शिष्य हैं, और व्यासदेव जी के पुत्र हुए तो उनका नाम सुखदेव है। सुख यानी तोता, पोपट, कीर, जो राजा रानी के तोता थे, कीर थे उनके प्रिय कीर, जो व्यक्ति के रूप में अवतार लिया उन्होंने। और परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र थे, उत्तरा अभिमन्यु के पुत्र थे, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, अर्जुन पांडु के पुत्र थे, इस प्रकार से सीक्वेंस है। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। कब सुनाई? जब सुखदेव जी को 7 दिन में मृत्यु होने का शाप मिला, तब सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए, गंगा किनारे बैठे, हजारों संत लोग वहां पर आए कि इतने बड़े व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है, इतना राज ऋषि चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु हो रही है, बहुत राजऋषि थे बड़े वो, तो ऐसे व्यक्ति के मतलब प्रयाण के समय पर सब लोग को उपस्थित रहने की इच्छा थी, इसलिए वो सब लोग वहां पर अपना ध्यान वान गुफाएं छोड़कर प्रकट हो गए। यहाँ तक कि व्यास देव प्रकट हो गए सुखदेव जी की कथा सुनने के लिए, अगस्त्य मुनि, नारद मुनि, अंगिरा मुनि, सब बड़े बड़े महारथी मुनि जो बहुत युगों से जी रहे हैं, वो सब प्रकट हो गए वहां पर। सुखदेव 16 साल के हैं, व्यासदेव जी उनके पिता हैं दाढ़ी वाले, वो बड़े छड़े सब बैठे हुए हैं, क्योंकि ये भगवान की कथा करने वाले हैं और वो परीक्षित जैसे महान व्यक्ति के लिए करने वाले हैं। तो बैठ गए वो, तो बीच में ना सुखदेव जी को परीक्षित जी बता रहे हैं, ये बात ध्यान से सुनना आप, अभी सुखदेव जी जब परीक्षित बार को कथा कर रहे हैं तो कोई टी ब्रेक, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक, स्मॉल ब्रेक, बिग ब्रेक नहीं है वहां पर, वो लगातार सुन रहे हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसा मुमकिन होता है, हमको तो 1 घंटे में अभी खिचड़ी खाना पड़ेगा, सुन नहीं पाएंगे इसके 1 घंटे के ऊपर, तब पर पैर दुखेंगे, पीठ दुखेगी, ये दुखेगा, मन वहाँ भटकेगा, भूख लगेगी, सर दुखेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, ऐसा नहीं था वहाँ पर। 7 दिन तक कथा चली, उसका कोई शेड्यूल नहीं था, शुरू हुई तो दिन रात चलती रही, परीक्षित के अंत होने तक, उसके शरीर समाप्त होने तक कथा चलती रही। अद्भुत है ना ये बात, इम्पॉसिबल लगती है लेकिन ये हुआ। और जब कृष्ण की कथा आरंभ हुई, पहले भागवत में श्रीमद् भागवत जो कहा गया उसमें अंदर भक्तों का चरित्र है, कुंती का चरित्र है, भीष्मदेव का चरित्र है, परीक्षित जी खुद का चरित्र है, फिर पांडवों का चरित्र है, फिर ध्रुव जी का चरित्र है, प्रहलाद जी का चरित्र है, प्रभु राम का भी संक्षेप में वर्णन आता है, नरसिंह भगवान का चरित्र है, और क्या क्या है, बहुत नशम, जमदग्नि, परशुराम, सभी के सुंदर रोचक कहानी है उसके अंदर। और वो 9 स्कंद है, 9 पार्ट, बड़े बड़े स्कंद मतलब कंधा, ऐसे बड़े 9 पार्ट्स हैं, और दशम पार्ट जो में जो है, 10th पार्ट जो है, उसमें कृष्ण की कथा आरंभ होती है। अभी जब 7 दिन में 12 स्कंद की कथा हुई तो दशम स्कंद कितने में दिन में आया होगा, एक अंदाज बताइए। 7 दिन में 12 स्कंद हुए और दिन में 1-1.5-2 स्कंद की कथा हुई तो दशम स्कंद की कथा में कितने दिन आ गए, 5 दिन हो गए ना, अभी 2 दिन बाकी है, 5 दिन हो गए, तो 5 दिन में उन्होंने खाना पीना प्यास वास कुछ नहीं हुआ है उनका, ना नींद हुई है ना ब्रेक मिला है उनको कि पैर थोड़ा फ्री करके आ जाए, ऑक्सीजन जरा ऊपर नीचे करके आके फ्रेश हो जाए, जरा नींद आ रही है। तो जब दशम स्कंद का आरंभ हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली 5 दिन के ऊपर दिन बीत चुके हैं, तो परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं देखिए महाराज, आप ये मत समझना कि 5 दिन हो गए मैंने खाना पीना कुछ किया नहीं तो मैं बहुत थक गया होगा, अभी मुझे इंटरेस्ट कम हो गया रहेगा, मैं एकदम परेशान हो गया होगा। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड महाराज जी, मुझे बहुत उत्सुकता है और मुझे प्यास भी नहीं लग रही है, ना भूख लग रही है, ना कोई नींद निद्रा का वेग आ रहा है। इसलिए आपको मैं इत्मीनान से कहता हूँ कि आप चिंता मत करना कि मुझे क्या हो गया रहेगा, मेरी क्या स्थिति होगी, बीमार हो गया क्या, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, IV लगाना पड़ेगा कथा सुनने के लिए, ऐसा चिंता मत करना आप। इमेजिन 5वें दिन के बाद में जो खाना पीना नहीं खाया वो बोल रहा है कि महाराज डोंट वरी, आप बोलते रहो, मैं सुनने को यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ नींद नहीं आ रही है, मैं ऐसा टेक के अभी थोड़ा जमाई नहीं ले रहा हूँ, मैं सतर्क हूँ, आप बोलते जाइए प्लीज, और मैं वादा करता हूँ कि ना मुझे प्यास लग रही है ना भूख लग रही है। क्योंकि वो कथा ही ऐसी है जिसमें प्यास और भूख भी सब भूल जाते हैं, शरीर का वेग जो है, शरीर की जरूरतें जो हैं, शरीर का जो बंधन है उससे भी वो आदमी ऊपर उठ जाता है। और सुखदेव जी परीक्षित को अभिनंदन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जैसा श्रोता हो तो बोलने वाले का कितना भाग्य है, आप जैसे श्रोता मिलना भी हमारा भाग्य है कि आप बैठे हो हमारे सामने और हमें कथा करने का मौका मिल रहा है। और बाय द वे सुखदेव जी ने भी कोई ब्रेक नहीं लिया है, उन्होंने भी कोई पानी नहीं पिया है, ऐसा नहीं कि वो वक्ता है इसलिए गिलास रखा है पानी का और वो बीच बीच में पानी पी रहे हैं, और श्रोता ने व्रत लिया है क्योंकि उसको मरना है इसलिए वो व्रत कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो सुखदेव जी भी कथा बोलने में इतने मग्न है कि ना उनको नींद आ रही है, ना उनको प्यास लग रही है, ना उनको भूख लग रही है, ना उनको और कोई वेग आ रहा है, या किसी का क्रोध का याद आ रहा है कि उसने मुझे कुछ बोला था अभी उसके बीच में याद आ गई, उसको कथा में संलग्न हो गया ना कि हिरण्यकशिपु को देखकर प्रहलाद जी को कष्ट देते हुए, हिरण्यकशिपु को देखकर नरसिंह भगवान को क्रोध आया तो मुझे भी, मुझे कष्ट दिया तो उसकी याद आ गई कि इसको मैं ऐसा भी माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है उनका। तो ये कॉम्बिनेशन है, कथा बोलने वाला भी नंबर 1 का और सुनने वाला भी नंबर 1। फिर से ऐसी जब कथा होती है तो श्रीमद् भागवत प्रकट हो जाता है उसके संवाद से, उनके मिलन से, उनके एक सिर्फ साथ बैठने से। तो ये सब प्रसंग किसमें आया पता है, ये प्रसंग उसमें आया है जब ही अघासुर का वध होता है, अभी दशम स्कंद की कथा चल रही है, कृष्ण की कथा शुरू हो गई है, कृष्ण का जन्म हो गया है और फिर अघासुर नाम के बड़े सांप दैत्य का कृष्ण भगवान वध करते हैं। अभी बहुत लंबी लंबी कथा है, हम शाम तक बैठ सकते हैं लेकिन संक्षिप्त में बता रहे हैं आपको कि अघासुर का वध करते हैं, भगवान के शरीर में घुसते हैं, फिर एक्सपांड हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं तो उसका आँख फट जाती है और वो बाहर निकलते हैं, उसका वध हो जाता है और अंदर घुसे हुए सब बालकों को भगवान बचा लेते हैं और तुरंत वहाँ से चले जाते हैं जमुना किनारे, कहते हैं अभी हमने इतना श्रम किया, अभी बहुत लीला हो गई, एंग्जाइटी हो गई, चलो जमुना किनारे जाते हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण है, कमल खिले हुए हैं, राजहंस जमुना जी में विहार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर मधुर हवा चल रही है, सुगंधित पुष्प अपना खुशबू दे रहे हैं, ये बढ़िया मौसम है, अभी हम लोग स्नान करेंगे इस निर्मल जल में, सुगंधित जल में, और फ्रेश हो जाएंगे और फिर इसके किनारे पे हम लोग बैठकर गोलाकार हमारी छाक लीला करेंगे, यानी भोजन की लीला करेंगे, ऐसा वर्णन कर रहे हो। तो उसके बाद में वर्णन आता है कि अघासुर को भगवान ने मारा, ये कथा वो अपने घर वालों को 1 साल के बाद कर रहे हैं। अभी उनका क्या रोज का हैबिट था, रोज वन वन में जाते थे गाय चराने के लिए और वो दिन क्या हो गया वो शाम को पूरा बता देते थे, इतना उनको उत्सुकता है, पापा मम्मी नंद महाराज यशोदा आपने सुना, आप जानते हो आज क्या हुआ, आज हमारे कान्हा ने माटी खाई, अरे आज हमारे कान्हा ने इसको मारा उसको मारा, आज आज सांप को मारा उन्होंने, इतना बड़ा अघासुर पाइथन यानी अजगर, कितना मील का लंबा था उसका मुंह जो था ना वो आसमान में गया था, उसका मुंह का ऊपर का हिस्सा बादलों में था, नीचे का हिस्सा हाईवे की तरह रोड पे था, हम लोग देख के परेशान हो गए, हमको लगा अच्छा खिलौना बना के रखा है इसलिए हम लोग घुस गए अंदर और फंस गए, फिर कान्हा ने अंदर जाकर क्या लीला किया, उस राक्षस को मार डाला। लेकिन ये कथा जिस दिन हुई उस दिन नहीं बता रहे, 1 साल के बाद बता रहे, तो परीक्षित महाराज सुन रहे हैं ऐसा, हाँ ठीक है बोलते रहो, नहीं उनको पॉइंट मन में आ रही, हर रोज तो रोज बताते हैं, आज 1 साल के बाद बताया ऐसा वर्णन क्यों कर रहे हैं। ओके ओके महाराज महाराज वेट वेट वेट, मेरा एक प्रश्न है आपको, 1 साल के बाद क्यों बता रहे हैं, 1 साल में क्या हुआ, मतलब इतना गैप क्यों पड़ा बीच में। ये प्रश्न सुनकर तुरंत ही सुखदेव जी महाराज बेहोश हो गए, समाधि में चले गए। क्यों समाधि में चले गए, अरे बाबा, सामने वाला व्यक्ति का 7 दिन में देहांत हो रहा है, उसको पूरी कथा पता नहीं है, उधर टाइम नहीं है बेहोश होने के लिए, देर नो टाइम, इतना सारा बताना है उसको, उसको भगवान के धाम पहुंचाना है, ऐसी कथा करनी है सिंपल, दुनिया की कथा नहीं करनी है, कौन हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, उसको वो बताना है जो उसके लिए जरूरी है, जो सुनकर वो अमृत पीकर उसको भगवान के दरवाजे में खड़ा होने के लिए योग्य बनाना है, तो टाइम नहीं है बीच में समाधि भावधि लेने के लिए, उसके लिए बाद में करो समाधि, कोई बाद में फिर सामने वाला पात्र नहीं होगा उस समय तो। लेकिन फिर भी उनकी समाधि लग गई, क्यों? क्योंकि उसमें वो स्टोरी छुपी हुई थी कि बीच में जब भोजन कर रहे हैं तो लोग बड़ा बढ़िया से भोजन कर रहे हैं, गोल बैठे हुए हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, उसको मुंह से खा रहे हैं, बहुत आनंद की लीला चल रही है। उसमें ब्रह्मा जी वहां से आते, उनको खबर मिल गई थी ऊपर ब्रह्मा लोक में कि ब्रह्मा लोक तक जिसने थर्रार पैदा किया था, डर पैदा किया था, भय पैदा किया था, ऐसे भयंकर अजगर अगासुर का कहते हैं एक ब्रज के छोटे से बालक ने वध कर दिया। अरे कैसे हो सकता है, सारे देवता भयभीत है उससे, इंद्र आदि वज्र लेने वाले देवता भी भयभीत है, और सुन रहे हैं कि एक छोटा सा बालक जो गाय चराता है, दूध निकालता है, दूध पीता है, दही खाता है, लोनी चोरी करता है, उसने उसका वध कर दिया, तो उसको यकीन नहीं हुआ। और कुछ कुछ ऋषियों ने बताया ब्रह्मा जी को, अरे वही तो भगवान है, वो अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। बोला क्या बात कर रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ। तो वो हंस के बैठ के ऊपर आए, आकाश में बैठकर एरियल व्यू ले रहे हैं, और नीचे यहाँ पर जमुना किनारे सब लोग आराम से खा रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, इसके मुँह से मैं खा रहा हूँ, मेरे मुँह से ये खींच के खा रहा है, उसका डब्बा मैं लंपास कर रहा हूँ, वो उसको हवा में उड़ा रहे हैं, कोई कैच करके उसमें से खा रहा है, दूसरे को उड़ा रहा है, ये सब चल रहा है उधर। ये मेरे भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाक, ऐसे हम लोग उनका मंत्र बोल के प्लीज करते हैं, तो ये तो यहाँ पर छीना झपटी जूठन खा रहे हैं, क्या है ये सब? तो इधर इनका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो सब बछड़ों को चुरा लेते हैं, गायों को चुरा लेते हैं, ब्रज ग्वाल बालों को भी चुरा लेते हैं। और फिर भगवान जो है, अब मैं आपको एकदम संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर कथा है। अच्छा, भगवान अकेले हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि अरे ब्रह्मा जी का खेल है ये, तो ऐसे चुटकी भर के मन की इच्छा से जितने ग्वाल बाल को चोरी करके ले गए थे उसका सब रूप तैयार कर देते हैं, खुद बन जाते हैं, जैसे कि मैं खुद डॉक्टर संजय परब बन गया, मैं खुद ये बन गया, मैं खुद वो बन गया, ऐसे सब पूरा जितना जैसा सीन था वैसे ही डुप्लीकेट कर देते हैं। ब्रह्मा जी एकदम चकरा जाते, अरे अभी तो ले गया था उनको मैं, उधर छुपा के आया था और देखने आया था, क्या मजा चल रहा है देखने, तो अभी क्या है भगवान, देखता हूँ क्या कर रहे हैं, मतलब अगर भगवान है तो देखते हैं, परीक्षा लेते हैं उनकी, लेकिन सब वैसा ही सीन है। वापस चला गया तो उधर सब लोग उनको ना, उन्होंने हिप्नोटाइज करके सुला दिया था अपने गुफा में ब्रह्मा लोक में, तो वैसे ही पड़े हुए सब लोग। फिर आके देखते हैं वैसे ही नीचे का आराम मजा कर रहे हैं, चिना चपटी चल रही है, वो मजाक चल रहा है, क्या क्या बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, डब्बा उड़ा रहे हैं आकाश में, तो बहुत आश्चर्य हो गया उनको। अभी चार मुख वाले ब्रह्मा में कितनी ब्रेन है मालूम है आपको, कितना बुद्धि है पता है आपको? ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, आपका पृथ्वी लोक, और बाकी जो आपको नहीं दिख रहा है 7 स्वर्ग लोक, और जो आपको नहीं दिख रहे हैं 6 नीचे वाले लोक, 14 लोकों का निर्माण उन्होंने किया है, और 14 लोक में जितने आप लोग रहते हो, जितने जीव रहते हैं, सबका भी इंजीनियरिंग उन्होंने किया है। कोई सेम दिखता है क्या इसके अंदर? देखो फोटो निकाल के देखो, जुड़वा भाइयों को बहनों को रखो साथ में, वो देखो वो सेम दिखते हैं, कोई सेम नहीं दिखता है, सिमिलैरिटी है लेकिन सब डिफरेंट है, ऐसा सब क्रिएशन है उनका, इतना ब्रेन है उनके अंदर। सुखदेव जी की कथा में ऐसा नहीं हुआ था कभी, चलता रहा कंटिन्यूस। तो मैं क्या कह रहा था, तो ब्रह्मा जी ऑलरेडी इतने बड़े ब्रेन वाले ब्रह्मा जी जो है वो देख रहे हैं, अरे ये तो मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे, चार दिमाग में इतना सॉफ्टवेयर फिट है उनके, इतना सारा क्रिएशन का, वो भी भ्रमित हो गया, और उनके भ्रम में और भर डालने के लिए और भ्रमित करने के लिए क्या किया भगवान ने, वो जितने भी लोग थे ना वो खुद बने हुए थे, ग्वाल बाल और बछड़े खुद थे ना, वो सब विष्णु बन गए। वो देख रहे हैं, एक प्रेक्षक आकाश से देख रहा है, और अभी सब लोग छीना झपटी कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, अचानक सारे लोग विष्णु बन गए, चार भुजा वाले। बस यहां तक उनका चमत्कार सीमित नहीं था, वो एक एक विष्णु के सामने 133 कोटि देवताओं का सेट भी पैदा हो गया, और वो विष्णु का वो आरती पूजा पूजन गीत गायन जो है वो चल रहा है उनका। और ऐसे अनंत ब्रह्मा अनंत देवताओं का सेट वो सब देख रहे हैं, और खुद को भी देख रहे हैं, उसमें ब्रह्मा भी है और वो भी उनकी आरती पूजा कर रहे हैं, खुद को भी देख रहे हैं सबके अंदर। और उनके आश्चर्य में और भ्रम डालने के लिए और आश्चर्य डालने के लिए अचानक भगवान ने सब कुछ गायब कर दिया और एक नन्ना सा बालक का रूप धारण करके वापस ऐसे देख रहे हैं। अरे मेरे एक ग्वाल बाल बछड़े कहाँ चले गए? ऐसे हाथ में थोड़ा दही दही और चावल का मिक्सचर है, तो खाते खाते ढूंढ रहे हैं। जैसे पहले देखा था ना, वो जब भी गायब किया था तो ढूंढ रहे थे वो, तो वैसे ही ढूंढ रहे हैं। कितने सीन बदली हो गए एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही रंग मंच पर कितने सीन बदली हो गए। ब्रह्मा जी पूरे भ्रमित हो गए कंप्लीटली, मतलब बोलते हैं ना कभी कभी ब्रेन शट डाउन। तो कभी कभी हम लोग पानी नहीं पीते बहुत मोशन होते ना तो किडनी शट डाउन होता है, एक्यूट रीनल शट डाउन, वैसे एक्यूट ब्रेन शट डाउन हो गया उनका। अभी कभी कभी कैसा होता है ना, कभी भी हमने बहुत पढ़ाई करके एग्जाम में जाते हैं पर एक ऐसा प्रश्न आता है ना तो कभी सुना ही नहीं था हमने आज तक, ऐसा होता है ना बहुत बार। अरे ये प्रश्न क्यों, कौन से बुक से है, कौन से सब्जेक्ट में था ये, तो पढ़ाई नहीं किया था ना तो मालूम कैसे पड़ेगा। तो वो जब प्रश्न सामने आता है तो बाकी सब प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि भी क्या पहले लिखूं, वो टायर तय कर रहा हूं कैसे लिखूं, लेकिन वो जब प्रश्न आता है ना तो पिछले आने वाले उत्तर इसके हमको है वो उत्तर भी भूल जाते हैं, उसको कहते हैं एक्यूट ब्रेन शट डाउन। ऐसा ब्रेन ब्रह्मा जी का कंडीशन हो गया कि क्या सोच के आया था, क्या कौन सी पावर यूज किया, उनको पिकअप किया, उनको बेहोश कर दिया, उनको वहां छोड़ के नीचे आया, कितना सिद्धियों का उपयोग किया, लेकिन सब फेल हो गया के सामने। और वो फिर समझ गए कि मेरे ब्रेन को एक्यूट ब्रेन शट डाउन करने वाले एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, वो है भगवान। और लगता है ये बालक ही भगवान है, क्योंकि इतना मेरा ब्रेन शट डाउन करने का शक्ति दुनिया में इंद्र के पास भी नहीं है और किसी देवता के पास भी नहीं है, मैंने सब कुछ पावर उनको दिया है। तो मेरे ब्रेन को शट डाउन करने का शक्ति केवल एक व्यक्ति में है, वो है कृष्ण, वो है मेरे भगवान परम पुरुषोत्तम। वही परम पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर परात्पर भगवान यहाँ पर लीला करने के लिए बालक बनकर आए हैं, मक्खन खा रहे हैं, चिना झपटी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आकाश में डब्बा उछाल रहे हैं, जमुना जी में कूद रहे हैं। और चार मुख वाले ब्रह्मा ने दंडवत प्रणाम किया कृष्ण को। आप सोच सकते हैं जो करोड़ों वर्ष के व्यक्ति हैं उम्र के, जो एक 4-5 साल के बालक के सामने हे बड़ा दंडवत कर रहे हैं चार हेड के साथ, और बालक ऐसा खड़ा है ऐसा मुरली लेकर ऐसे पांव रखे मुरली घुमा रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, इसका स्मरण सुखदेव जी को हुआ कि 1 साल के बाद में क्यों बताया, और ये केवल सोचकर ही वो बेहोश हो गए, समाधि लग गई उनकी। अभी बताने वाले वो आगे, बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया ना कि 1 साल के बाद क्यों, क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ऊपर गए और जब नीचे आए तो उनका एक क्षण में वापस आए वो, लेकिन उनका क्षण एक क्षण जो था पृथ्वी का 1 साल था। तो ग्वाल बाल सभी जो है 1 साल तक पृथ्वी के ब्रह्मा जी के एक क्षण ब्रह्मा गुफा में बेहोश रहे, मतलब हिप्नोटाइज सम्मोहित अवस्था में रहे। और फिर जब उनको होश आया, दंडवत किया, प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, माफी मांगी, सब कुछ होता है ना बाद में, फिर एक बार समझ में आया कि भाई बाप रे कितना बड़ा गड़बड़ किया मैंने, तो सब कुछ पश्चाताप वगैरह किया, प्रार्थना किया, स्तुति किया, भगवान ने कहा दोबारा मत करना, सब कुछ हो गया लीला। फिर बच्चों को छोड़ दिया उन्होंने आके, ये लो भाई आपके बच्चे, और वो बच्चे उस दिन जैसे कि उसी दिन जा रहे हैं घर पे, ऐसे ही घर पे चले गए नाचते कूदते आराम से, मतलब आज अगासुर को मारा सांप को और आज ही शाम को सब घर जा रहे हैं, तो उनके लिए तो आज ही है, तो वो आज ही बता रहे हैं कि आज ही ऐसे हुआ, आज ही हुआ, आज ही हुआ। तो वहां पर एक जगह है उसका नाम है आज ही, जहां पर हमारे इस्कॉन का गुरुकुल है, वो गांव है आज ही, आज ही हुआ, आज ही हुआ, ऐसे सुना रहे। तो सुखदेव ने क्या किया, अगासुर को मारा, ग्वाल बाल घर चले गए 1 साल के बाद में, और उन्होंने कहा कि आज ही लीला हुआ, तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है 1 साल के पहले लीला हुआ है। तो अभी उसको उत्तर देना ना, अरे बीच में क्या हुआ, तो बीच में क्या उत्तर देना है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ मुझे भी सोचना पड़ता है कि क्या आगे बोलना है, तो आगे क्या बोलना है ये सोच कर ही उनको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि ब्रह्मा को भगवान ने विमोहित कर दिया, तो समाधि लग गई उनकी। अभी प्रॉब्लम आया ना, अभी समाधि लग गई तो ऐसे समाधि में रहेंगे तो कथा कैसे आगे चलेगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो परीक्षित महाराज बहुत होशियार थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा चलो भाई उन्होंने भी एक समाधि ले लिया, मैं भी एक थोड़ा नैप ले लेता हूँ, है ना। हम लोग क्या सोचेंगे, अच्छा हुआ भाई कथाकार को नींद आ गई तो हम लोग थोड़ा जबकी ले लेते हैं, हमारा भी भाई कितना दिन से चल रहा है ना ब्रेक है ना टी है ना कुछ है ना नाश्ता है ना बिस्किट कुछ है नहीं बीच में। उन्होंने बोला, उन्होंने ना बहुत होशियार थे वो, उनको पता था कि ये बोलने वाले व्यक्ति इतने महान है, इतने महान है कि भगवान के किसी भी कथा में इनके होश उड़ सकते हैं, इतनी दिव्य भक्ति थे, भक्त थे भगवान के वो। तो अगर बीच में उनका समाधि लग गया तो उनने वाजंत्री गाने वाले ढोल वोल सब तैयार रखा था, बोला ए बजाओ तुरंत, तो धार 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 सब चालू हो गया उनका कीर्तन, तो उनकी वापस समाधि टूट गई, फिर कथा शुरू हो गई। आप सब ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, सोचो आप कि सुनने वाला कैसा व्यक्ति है। देखो सब कुछ अरेंजमेंट कर कर करके उसने, वैसा गाफिल नहीं है। अरे अभी क्या करने का, बाप रे हो गया अभी डॉक्टर को बुलाऊं कि क्या करूं, अभी क्या करूं, हकीम को बुलाऊं या वैद्य को बुलाऊं। उनको मालूम था कि ये साधु है, ये बेहोश नहीं होते हैं, केवल भगवान के चिंतन में समाधि लगती है उनकी, तो उनका उपाय भी करके रखा था। जैसे ही ये ठक हो गए उधर से ठक इंस्ट्रक्शन दिया और चालू, और तुरंत कुछ क्षण में वो उसमें आ गए और फिर उन्होंने पूरी ब्रह्मा की कथा बताई। ये है श्रीमद् भागवत। अभी आप दिल से बताइए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इतना प्रेम से बता रहा हूँ, किसी को नींद आई, किसी को बोर हो गया, किसी को लगा क्या कब बंद करेंगे, इतनी सुंदर कथा है। और अगर मैं विस्तार में बताऊंगा ना तो ऐसे ही बैठेंगे आप, एक एक ऐसा उसका खोल खोल के बताऊंगा तो इतना आनंद आएगा आपको। और ये कथा मैं खुद 50 बार बता चुका हूँ, लेकिन मुझे 50 बार बोलने के बाद में और 51 बार बोलने की भी इच्छा होती है। आप मुझे दोबारा इससे कथा करवाओ, मैं दोबारा कथा करूंगा इसकी, क्योंकि क्या क्या होता है इस कथा करने से, ये कथा सुनने से हृदय की शुद्धि होती है, हृदय के पाप भाव नष्ट होते हैं, हृदय में पुण्य भाव निर्माण होते हैं, हृदय में भगवान के विषय में प्रेम उत्पन्न होता है, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। जो जीव को आनंद चाहिए, जिसके लिए आनंद के लिए जीव इतना मेहनत कर रहा है, वो आनंद उसको सहज ही प्राप्त हो जाता है। हाँ, वो वड़ा पाव जलेबी पाव मिसल खाने की जरूरत नहीं जाके, इसी से वो आनंद प्राप्त हो जिसके आप खोज में हो, जो आपको संतृप्त करेगा, पूर्ण करेगा, संतुष्ट कर देगा, वो सब कुछ किसके अंदर है। और जो व्यक्ति की कथा आप कर रहे हो उस व्यक्ति से आपको प्रेम हो जाएगा, और व्यक्ति से प्रेम होने से उसके पास पहुंच जाएंगे आप, कितने लाभ है इसके अंदर। नहीं तो फिर वो परीक्षित महाराज और सुखदेव जी इतने 7-7 दिन कैसे बैठ सकते थे, अगर इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है, तो कौन बैठेगा। सब उठ के चले जाएंगे, धीरे धीरे पीछे वाले उठेंगे, आगे भी धीरे उठ के चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि सुखदेव जी बैठे रहे, परीक्षित जी बैठे रहे, सारे संत लोग बैठे रहे, व्यास देव जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हाँ मेरा बालक को मैंने सिखाया था 3 बार भागवत तो मैंने सिखाया उसको, वही तो बोल रहा है क्या नई बात बता रहा है। हाँ टीचर ऐसा नहीं बोल रहे, वो भी बैठे हुए हैं, उनके गुरु जो जिनसे उन्होंने सिखाया वो भी उधर ही बैठे हैं, सब लोग बैठे रहे, कितना अलौकिक सभा है ये। देखो एक छोटा सा विद्यार्थी बोल रहा है और सारे उसके गुरु है जो सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वे सही सोच नहीं रहे कौन जूनियर है कौन सीनियर है, उनको कथा सुननी है भगवान की, बस इतना देख रहे योग्य है बताने वाला, छोटा हो बड़ा हो उसके मुख से वो दिव्य कथा सुन रहे हैं। और ये जो समागम संतों का है, ये 7 दिन 7 रात तक चलता रहा, उसका अंजाम ये हुआ कि परीक्षित को, देखो आप कथा का क्या पावर है, देखो आप, परीक्षित को शाप था कि वो 7 दिन में उसका सर्प पक्षी तक्षक के द्वारा दंश होकर वध हो जाएगा, शाप दिया एक, वो भी एक लंबी कथा है उसका, को शाप दिया। तो एनी वेज वो शाप दिया तो वो बैठ गया कथा में सुनने के लिए, अभी वो डरे नहीं थे, अरे बाप रे सांप काटेगा मृत्यु होगी कैसे होगा मेरा, ऐसा नहीं था, एकदम विरक्त थे वो, ठीक है मरना तो किसी को भी है, अरे सांप से नहीं मरेगा तो हार्ट अटैक से मरेगा, बुढ़ा होके मरेगा, किडनी फेल होके मरेगा, मरना तो है ही, तो डरना क्या है उसके अंदर इतना, लेकिन करना क्या है, अगर डरना नहीं तो करना क्या है, कथा सुननी है भगवान, कथा सुनने के लिए सब राजवस्त्र त्याग करके वो गंगा किनारे आ गया। और कथा श्रवण करने मात्र से इतना सिद्ध हो गया, इतना सिद्ध हो गया राजा, इतना सिद्ध हो गया कि तक्षक राज, तक्षक सर्प के दंश होने के पहले ही उसके प्राण निकलकर भगवान के पास चले गए थे। और तक्षक का काटना, दंश करना एक फॉर्मेलिटी बची थी, क्योंकि शाप तो था तो उसको विधान को सत्य होना ही है, तो 7 दिन के बाद में उसको आना ही और काटना ही है। तो तक्षक सर्प पक्षी ने काटा किसको, मृत शरीर को काटा, और उसके पहले ही परीक्षित महाराज की जो आत्मा थी वो भगवान के पास सेवा करने के लिए पहुंच गई थी, परम सिद्धि को प्राप्त हो गया था। मतलब मृत्यु पर भी विजय पाया उन्होंने, मृत्यु आ रहा है मैं डर रहा हूँ ऐसे सर के बाप रे ऐसा करके मृत्यु हो गई भाई, यूरिन और स्टूल निकल गया, ऐसा पेशेंट का होता है ना बहुत, अरे डर के एकदम तुरंत पैंट गिली कर देते हैं, बहुत लोग ऐसे मरते हैं डर के मारे, अरे यमदूत आ रहे हैं, ऐसा ध्यान नहीं हुआ उसका। केवल कथा श्रवण करने से वो सभी बंधनों से मुक्त होकर परे चला गया और कुछ समय पहले ही निकल गए वो, फिर सबके सामने तक्षक आया बड़ा ऐसा पक्षी, सांप सांप भी है और पक्षी भी है, उड़ते आया दंश किया वो शरीर नीचे गिर गया, उसका दाह संस्कार किया गया। लेकिन परिचित नहीं है उसके अंदर, वो सर्प पक्षी परिचित को छू नहीं सका जब तक उस शरीर में थे, क्योंकि तो कथा का प्रभाव था उसके ऊपर, कथा के संपृक्त होकर वो कृष्ण भावना भावित हो गए थे। और वही परिणाम हमारे पर भी हो सकता है अगर हम उस प्रेम से कथा सुनेंगे भगवान की, इसलिए सुना रहे हैं आपको, क्योंकि सुनने के बजाय उसका टेस्ट कैसा निर्माण होगा, तो सुनेंगे तो टेस्ट लगेगा, तो बार बार सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जब रुचि उत्पन्न होगी तो फिर वो बाकी सब गंदी मसाला जो रखा है वो बाहर जाएगा और फिर भगवान की कथा अंदर आएगी, दिल शुद्ध होगा, प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, जो जीवन में चाहिए वो प्राप्त होगा। जो सबसे बड़ी भय सबसे बड़ा भय सबको था हाँ, उससे परीक्षित मुक्त हो गए केवल कथा श्रवण से। सोचो आप, कथा भगवान का श्रवण करना इतना पवित्र कार्य है कि सारे कर्तव्य निभाने के बाद कथा ही सुनना चाहिए हमको। पुराने जमाने में हमारे कल्चर ऐसा था, अभी को डॉक्टर संजय परे मेरे सामने बैठे हैं हाँ, इनके घर में पीढ़ियों से ऐसा कल्चर है, आज भी है, रोज शाम को सारे परिवार के लोग जो गांव में आस पास रहते हैं घर पे आते हैं, देवी के मंदिर में बैठते हैं और कथा करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, क्या क्या सुंदर सुंदर गोवर्धन गाते हैं, फिर आरती करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, सो जाते हैं रोज। जैसे आप और हम, मैं नहीं सॉरी आप हो सकते हैं, मैं तो टीवी देखता नहीं, जैसे हम रोज टीवी देखते हैं, तो इसमें गैप है क्या बीच में? नहीं, आज संडे आज टीवी देखेंगे नहीं, आज क्या संडे में छुट्टी होना चाहिए, टीवी क्या देखना। जैसे हम रोज नित्य नियम से टीवी देखते हैं, रोज नित्य नियम से व्हाट्सएप पर खेलते हैं, जो रोज नित्य नियम से मैसेज भेजते हैं, रोज नित्य नियम से वीडियो ट्रांसफर करते हैं, रोज शाम को आपको भेजना ही है ब्रॉडकास्ट में, वैसे रोज नित्य नियम से कथा सुनते थे घर पे, ये हमारा कल्चर है। आज वो सब कल्चर टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर और इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या और आ गया मेरे को मालूम नहीं, उसी में सबका नित्य नियम से साधना चल रही है। वो साधना का अंजाम क्या है? वो सर्प पक्षी आके काटेगा आपको एक दिन समय होने पर, और सब हम नरक में चले जाएंगे, क्योंकि वो जो वो कथाएं हमने सुनी है, जो कथाएं देखी है वीडियो पे और वो ट्रांसफर की है, दूसरों को सुनाई और दिखाई है, उसका अंजाम क्या है? नरक। वो सर्प पक्षी आएगा और काटेगा और सब इत्मीनान से नरक की ओर लाइन लगा के जाएंगे। उससे बचना है तो भगवान की कथा सुनिए, और ट्रांसफर करना है तो भगवान की कथा ट्रांसफर कीजिए, भगवान का मैसेज ट्रांसफर कीजिए, गीता के श्लोक ट्रांसफर कीजिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है उसको ट्रांसफर कीजिए, जो उनको उनके लिए हित है उसके अंदर वो ट्रांसफर कीजिए। तो वो परम भगवान जिनकी कथा हमको सुनना है, जिनकी कथा श्रवणीय है, कानों के लिए आत्मा के लिए कल्याणकारी है, उनका जन्मदिन है आज, आज और कल दो दिन मनाते हैं भारत में अलग अलग पंचांग के हिसाब से, तो इसलिए उस कथा का प्रयोजन है। सबको समझना चाहिए, अगर हम मनुष्य हैं तो हमको ये करना है। मनुष्य ये नहीं है इसलिए कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और वही करेंगे जो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति हमारी मोबाइल के द्वारा करेंगे, दिन रात बैठकर दो दो घंटा तीन तीन घंटा रात रात तक बैठ के उसमें मैसेज समाप्त नहीं होते पढ़कर और सुनकर और भेजकर, लेकिन उससे अंजाम निश्चित है हमारा, कहाँ जाएंगे हम, और ये सुनेंगे ये पढ़ेंगे तो अंजाम निश्चित है कहाँ जाएंगे। इसलिए तय कर लो, युवा अवस्था सबसे बेस्ट अवस्था होती है जीवन को दिशा देने के लिए, बुढ़ापे का समय में जीवन को दिशा कहाँ देंगे, जीवन तो ऑलरेडी एक दिशा में चला गया, वहाँ से दो जो जो मोड़ बचे हैं वहीं जा सकते हैं आप, अभी आपको कुछ चेंज किया तो पूरा जिंदगी का रास्ता बदल कर सकते हैं आप, यहाँ से लेकर उधर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जा चुके तो वहाँ से वहाँ जाना बहुत मुश्किल है और एनर्जी भी नहीं बचता है ओल्ड एज होने के बाद। युवा अवस्था एक बहुत तेज गति से चलने वाली एक जेट की तरह होता है, यहाँ जा रहे हैं फास्ट एकदम, थोड़ा डाइवर्ट हो गया ना थोड़ा सा एक डिग्री से तो और किधर चला जाएगा वो, वो रडार ने इसको ऐसा दिशा दे दिया इधर से इधर, अभी तो इधर ही है वो, लेकिन जब चलेगा ना आगे तो किधर और चला जाएगा। तो उस अगर फास्ट चलने वाले जेट को अगर सही दी दिशा आपने दे दी भगवान के चरणों की ओर, तो वो उतनी तेज गति से उधर पहुंचेगा और जीवन का कल्याण होगा। यही भक्ति वेदांत के आपके लिए भेंट है, गिफ्ट ऑफ गॉड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा, थोड़ा जोर से बोलिए, अभी तक 7 दिन नहीं हुए, 1 ही घंटा हुआ है, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो आप सब लोगों को श्री जन्माष्टमी गोकुलाष्टमी का पूरा अभिष्ट चिंतन, पूरी शुभकामना, और उम्मीद है कि ये उत्सव के बहाने हम कृष्ण लीला में मग्न रहेंगे। अगर लेक्चर सुनने हैं तो लेक्चर मिल सकते हैं iskondesiretree.com पे, यहाँ पर किताब है कृष्ण नाम की, उसमें लिखा है कृष्ण के जन्म की कथा। ये सुनने का समय है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ये समय है भगवान के जन्म के बारे में सुनने की, जो सुनने मात्र से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन, जब शरीर छोड़ोगे आप मेरी कथा सुनते हुए मेरे चिंतन करते हुए, तो आप वापस दुनिया में नहीं आओगे दुख भोगने के लिए, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। नैति मामेति सो अर्जुन, वापस नहीं आना पड़ेगा आपको, न इति, डोंट वरी, जस्ट लिसन टू माई कथा, मतलब कृष्ण की कथा, एंड डिलीवर योर सेल्फ, मुक्त करो अपने आप। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।